नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा है कि भारत के कृषि रसायन उद्योग में चीन से प्रतिस्पर्धा के बावजूद मौजूदा 9% से अधिक बढ़ने की क्षमताएं हैं। चंद ने कहा है कि कई पश्चिम देश कृषि रसायनों के स्थान पर अब जैव कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और भारतीय उद्योग को इस पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया से कृषि रसायनों के व्यापार को आसान बनाने पर एक प्रस्ताव लाने का आग्रह किया। नीति आयोग के सदस्य चंद ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में ACFI की 6वीं वार्षिक आम बैठक के अवसर पर एक चर्चा के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा, कृषि रसायन उद्योग ने 9% की उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। इस वृद्धि दर का अधिकतर हिस्सा कोविड वैश्विक महामारी के वर्षों के दौरान हासिल हुआ, जब उत्पादन गतिविधियां गंभीर रूप से प्रभावित थीं। चंद ने कहा कि आर्थिक और उत्पादन व्यवधानों के बावजूद घरेलू कृषि रसायन उद्योग ने 2017-18 और 2022-23 के बीच प्रभावशाली वृद्धि की। उन्होंने कहा, हम इस वृद्धि दर को आसानी से 9% से अधिक भी बढ़ा सकते हैं। अमेरिका चाहता है कि G20 देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय विकास बैंकों को नया आकार देने और उन्हें बढ़ाने में मदद करें। व्हाइट हाउस के एक शीर्ष अधिकारी ने यह बात कही। रणनीतिक संचार के लिए व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वयक जॉन किर्बी ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की भारत यात्रा के दौरान अमेरिका ये स्पष्ट कर देगा कि वो G20 के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो कि वैश्विक समस्या समाधान के वास्ते दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को साथ लाने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचेंगे। किर्बी ने बुधवार को यहां विदेशी पत्रकारों से कहा, G20 में जाने के लिए हमारा एक मुख्य लक्ष्य विश्व बैंक की तरह IMF जैसे बहुपक्षीय विकास बैंकों को नया आकार देने और उन्हें बढ़ाने में मदद करना है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि ये संस्थान विकासशील देशों में पारदर्शी और उच्च गुणवत्ता वाले निवेश जुटाने के लिए सबसे प्रभावी उपकरणों में से कुछ हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने इन संस्थानों को विकसित करने के लिए वर्तमान में जारी प्रमुख प्रयासों का समर्थन किया है, ताकि वो भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहें। G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ यानी 27 सदस्य समूह शामिल हैं। महिंद्रा समूह के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनीश शाह ने कहा है कि भारत की समावेशी G20 अध्यक्षता ने कई देशों को अपनी बात रखने का मौका दिया और वो दुनिया के कई देशों के बीच विभाजन को पाटने के लिए विशिष्ट स्थिति में है। शाह ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य उन सभी चुनौतियों से निपटने की बात करता है जिनका दुनिया आज सामना कर रही है, जो कई जटिल और परस्पर जुड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा, भारत की G20 की अध्यक्षता समावेशी है, ये कई देशों की आवाज बन रही है जिनके पास पहले अपनी बात रखने का मौका नहीं था। कुछ मामलों में ग्लोबल साउथ के साथ साथ अफ्रीका, मध्य और लैटिन अमेरिका के भौगोलिक क्षेत्रों से लेकर एशिया के एक बड़े हिस्से तक के देशों का एक विस्तृत विस्तार शामिल है। शाह ने कहा, जो अधिक महत्वपूर्ण है वो ये है कि भारत दुनिया के कई देशों के बीच विभाजन को पाटने के लिए विशिष्ट स्थिति में है। कुछ मामलों में उत्तर दक्षिण विभाजन, कुछ मामलों में पूर्व पश्चिम विभाजन। उन्होंने कहा कि भारत ने ऐसे समय में अध्यक्षता संभाली जब देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर काफ़ी कुछ कर रहा है। आज दुनिया में भारत को समझने, उसकी क्षमताओं तथा योगदान को पहचानने की अधिक इच्छा दिखती है। वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख और विदेशी कोषों की सतत निकासी से स्थानीय शेयर बाजार बृहस्पतिवार को गिरावट के रुख के साथ खुले। BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 187.11 अंक गिरकर 65,693.41 पर आ गया। NSE निफ्टी 55.35 अंक के नुकसान से 19,555.70 अंक पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, अल्ट्राटेक सीमेंट, JSW स्टील, हिंदुस्तान यूनिलिवर, इंफोसिस और पावर ग्रिड के शेयर नुकसान में थे। वहीं मारुति, भारतीय स्टेट बैंक, लार्सन एंड टुब्रो और भारतीय एयरटेल के शेयर लाभ में थे। अन्य एशियाई बाजारों में जापान का निक्की, चीन का शंघाई कंपोजिट, हांगकांग का हैंगसेंग और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी नुकसान में था। अमेरिकी बाजार बुधवार को नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.19% की गिरावट के साथ $90.43 प्रति बैरल के भाव पर था। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को 3,245.86 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेचे। रुपया बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे गिरकर 83.15 पर आ गया। अमेरिकी मुद्रा के मजबूत होने और कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने का असर घरेलू मुद्रा पर पड़ा। विदेशी मुद्रा के कारोबारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जारी विदेशी कोष के प्रवाह का असर रुपए पर पड़ा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 83.15 पर खुला, जो पिछले बंद स्तर की तुलना में 2 पैसे की गिरावट है। रुपया बुधवार को डॉलर के मुकाबले 83.13 पर बंद हुआ था। वहीं 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.01% की गिरावट के साथ 104.85 पर पहुंच गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.21% की गिरावट के साथ $90.41 प्रति बैरल के भाव पर था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।